तो वामनदेव के चरण कमलों के अभिषेक का प्रसंग चल रहा है। ब्रह्मा जी अपने कमंडलों से जल वामनदेव के चरण कमलों पर डालते हैं और उससे जो धारा उत्पन्न होती है उसको गंगा जी कहते हैं। श्रीमद् भागवत के अन्य स्थान पर इस बात का वर्णन है कि जब वामनदेव ने अपने आकार की वृद्धि की तो उनके बाएं पैर का नख जब ब्रह्मांड के एक स्तर से बाहर निकल पड़ा तब कर्णानव सागर के जल उनकी कुछ बूंदें अंदर प्रवेश करी और वह जाकर गंगा जल बन गई और तीनों लोकों को पवित्र करती हुई गंगा नदी बहती है। जिस प्रकार भगवान की कथाएं वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां त्रीं पुनातिः वक्तारं प्रच्छ्रकं श्रोत्रं यत्पादसलिलं यथा। वासुदेव की कथा प्रश्न तीन प्रकार के लोगों को पवित्र करते हैं, वक्ता, श्रोता और प्रश्न करने वाले को। इस प्रकार अनेक अनेक देवतागण, अनेक अनेक सिद्धचारण इत्यादि वहां आकर ब्रह्मा जी के समक्ष, ब्रह्मा जी के साथ मिलकर वामनदेव के चरण कमलों की आराधना करने लगे। तब तक वामनदेव ने देखते देखते उन सभी के समक्ष अपने आकार को छोटा कर दिया और फिर पुनः वही रूप धारण कर लिया। जब बलि महाराज के अनुयायियों ने यह देखा कि वामनदेव ने अपनी शक्ति से सब कुछ हस्तगत कर लिया है और उनके अभिनेता, उनके स्वामी बलि महाराज अब पूरी तरह से हर प्रकार के वस्तु से वंचित हो गए हैं, संपत्तिहीन हो गए हैं, ऐसी अवस्था में सारे अनुयायी, सारे असुरगण बहुत विचलित हुए और उच्च स्वर में आलोचना करने लगे, निंदा करने लगे। कहने लगे, ये वामन ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये वामन वास्तव में ठगराज है, ये विष्णु है जो केवल शत्रु पक्ष की सहायता करने इस प्रकार हमारे समक्ष आए और बेचारे हमारे नेता बलि, हमारे राजा भी क्या करते। अरे यज्ञ करने का व्रत किया था, यजमान है वो, इसलिए सत्य के प्रति परायण थे, ब्राह्मणों के प्रति पहले से कोई दराय दयालु है ही, और ऐसी अवस्था में क्योंकि यज्ञ करने का इन्होंने इस प्रकार से निश्चय किया था तो यज्ञशाला में वह न हिंसा कर सकते हैं, न असत्य का सहारा ले सकते हैं, पूरी तरह लाचार और बेबस हो गए और इसका भरपूर लाभ उठाया शत्रु पक्ष ने। और तब सारे असुरगण मिलकर चर्चा करने लगे, क्योंकि बलि महाराज इतने महान शक्तिशाली नरेश होते हुए भी अब परिस्थिति के अनुरूप विवश हो गए हैं, अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्वामी की सहायता करें, हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और अब शत्रु पक्ष को, इस वामन को दिखाएंगे कि वास्तव में हमारी शक्ति क्या है। इसने जो ये कार्य किया है इसका दंड इसको प्राप्त होना चाहिए। ऐसा चर्चा करते हैं, सभी अपने हाथ में त्रिशूल और भाले इत्यादि ले लिए और वामनदेव की ओर आक्रमण करने बढ़ते चले गए। जितने विष्णुदूत वहां पर थे, भगवान के पार्षद थे, वह मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान के प्रत्येक पार्षद के अंदर 10,000 गज का शक्ति था। यह सभी असुर गणों को मिलकर खदेड़ने लगे, बुरी तरह से उनको परास्त करने लगे। सारे असुरगण तितर बितर होने लगे, अपने असुर सैनिकों के इस प्रकार से विध्वंस और विनाश को देखते हुए बलि महाराज को बड़ा खेद हुआ। उच्च स्वर में सभी असुरों को वो सांत्वना देने लगे, चेतावनी देने लगे, अरे असुरगणों, ओ नामोचियो मित्र चित्ती, हे असुरों, कृपा करके मेरी इस बात को सुनो। एक समय था जब काल हमारे अनुकूल था और तब हम सारी संपत्ति अपने नियंत्रण में कर लिए थे, लेकिन अब काल हमारे प्रतिकूल हो गया है। काल के परिवर्तन को देखो, समझो, ये भगवान की काल शक्ति है, उनके नियंत्रण में रहती है। ऐसी अवस्था में अब इस प्रकार से हमें कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की काल शक्ति को यह कौन पराजित कर सकता है? किसी के शक्ति से परे है ये। और वो कहने लगे, बले न सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गे मंत्र औषधादि भीर सामादि भीर उपाय कालम न के शिवय जना। अरे काल का प्रतिकार करना किसी के लिए संभव नहीं। बले न सचिवैर्बुद्ध्या न शारीरिक बल से हम काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, न सचिव या मंत्रिमंडल के सदस्यों के निर्देश से, बुद्धिया न बुद्धि के प्रयोग से, न मंत्र औषधियों के प्रयोग से, न दुर्गैर अर्थात बड़े बड़े प्रासाद खड़ा करके और न काम या राजनीति इत्यादि के प्रयोग से कोई काल के प्रभाव पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। काल का आक्रमण बड़ा दुर्गम्य होता है, काल शक्ति पर विजय प्राप्त करना संभव ही नहीं। ये भगवान की अजेय शक्ति है, इसलिए असुरों मेरी बात मानो, जब काल अनुकूल होगा तब हम कुछ करेंगे, अब अपने पराजय को स्वीकार कर लो। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि चाहे कोई भी कितना शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान की काल शक्ति के प्रभाव से एक न एक दिन पराजय देखनी ही है। अर्थात केवल भगवान ही निरंतर विजयी रहते हैं और कोई भी जीव उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बहुत बड़े शक्तिशाली मुक्केबाज थे, उनका नाम था मोहम्मद अली, आपने शायद उनका नाम सुना होगा। वो अपने आप को कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, इस तरह उनका टाइटल था। अपने आप को कहते थे ब्लैक सुपरमैन। तो वर्णन आता है कि अपने जमाने में अपने समय के वह सबसे शक्तिशाली मुक्केबाज थे। अनेक अनेक प्रतिद्वंदियों को उन्होंने परास्त किया था, ठीक है, लेकिन कुछ समय के पश्चात बुढ़ापा आया और अब उनको एक ऐसी बीमारी, ऐसी व्याधि हो गई जिसको कहते हैं पार्किंसंस डिजीज। तो उनका अपने हाथ के ऊपर और अपने चाल चलन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा। सर पर बारंबार मुक्के खा के उनके सोचने विचारने की शक्ति कुछ क्षीण हो गई है, शिथिल पड़ गई है। ओलंपिक्स के इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए उनको बुलाया गया था। तो उद्घाटन समारोह में जो ज्योति को जलाना पड़ता है, उस समय उनके हाथ में मशाल लाके दी गई। उनके हाथ पर से नियंत्रण इस प्रकार चला गया था कि उस मशाल को भी वह ठीक तरह से नहीं पकड़ पाए और उनके हाथ में वह मशाल हिलने लगा, डुलने लगा। तो उस ज्योति को जलाने के लिए कुछ दो लोग और आए और उनके हाथ को पकड़कर उनकी सहायता की और फिर जाकर जब उनका हाथ कुछ स्थिर हुआ तब बड़ी कठिनाई से दो लोगों की सहायता से उन्होंने उस ज्योति को जलाई। उसके बाद मंत्र पुत्रों के साथ उनकी चर्चा हुई। कुछ रिपोर्टरों ने पूछा, देखिए मोहम्मद अली जी, एक समय आप अपने आप को आई एम द ग्रेटेस्ट बताते थे, लेकिन याद होगा, आपको याद होगा, आप ही बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। और आज हम सभी ने देखा, हमारे सामने ये बात हुई, ये घटना घटी कि आप अपने हाथ में जिस मुक्के से, जिस हाथ से आप अनेकों लोगों को मारते थे और अपने आप को ग्रेटेस्ट बताते थे, अब यही हाथ में कुछ शक्ति मिल रही। आप बताइए अब उस वक्तव्य के विषय में आपका क्या कहना है, जो आपने कहा था आई एम द ग्रेटेस्ट, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? रिपोर्टर तो ऐसे होते हैं कि जब तक मिल जाए तो पकड़ के वहीं में घुमा दिया, किसी को लज्जित करने में उनको बड़ा आनंद आता है। तो पूछे, बताइए आई एम द ग्रेटेस्ट, इसके विषय में आपको क्या कहना है? तो मोहम्मद अली ने कहा आई एम स्टिल द ग्रेटेस्ट। रिपोर्टर बोले, है क्या बोल रहे हो भाई, हमने देखा है, फोटो भी खींचा है, किस तरह दो लोग मदद कर, आई एम स्टिल द ग्रेटेस्ट।
बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट फूल.
अब मैं समझ गया हूं कि आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, सबसे बड़ा मूर्ख हूं मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं भगवान के काल शक्ति से भी परे हूं, भगवान की शक्ति से भी परे हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कभी भी कर सकता हूं, जो मन चाहे कर सकता हूं. लेकिन काल के प्रभाव से इस बात को समझ गया कि वास्तव में भगवान की अपार शक्ति है और मैं तुच्छ हूं. और उस समय अपने युवावस्था में, अपने जवानी में अपने आप को ग्रेटेस्ट घोषित करता था, इसलिए मैं ग्रेटेस्ट फूल हूं. अर्थात उसका ऐसा साक्षात्कार था. तो काल के प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति को पराजित होना ही पड़ता है. और यहां बलि महाराज अपने जीवन के उदाहरण से, बाकी अपने कितने सचिव से सैनिक थे उनको ये बात वर्णन कर रहे हैं. कहते हैं कि भगवान की काल की चक्की बहुत धीरे पिसती है. काल की चक्की बड़ी धीरे पिसती है, लेकिन जब पिसती है तो एक भी दाने को नहीं छोड़ती. पिसती है धीरे, आवाज भी नहीं आएगी. कई बार घर में चक्की होता है, इतना जोर से पिसता है कि पड़ोसियों को पता लग जाता है कि यहां पिस रहे हैं. लेकिन ये भगवान की जो काल की चक्की है बड़ी स्मूथ पिसती है, धीरे 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 सुनाने पड़ता. बड़ा इसमें फर्स्ट क्लास मोटर लगा हुआ है, सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन अंदर एक एक दाना है वह पिसेगा ही, एक भी दाना नहीं बच सकता. तो हमारे जीवन में भी काल का प्रभाव बड़े धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो कोई नहीं बच सकता. इसलिए भगवान का कर्तव्य है, भगवान ये चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उनके धाम में आ जाए. और इसके लिए उन्होंने इस भौतिक जगत में ये व्यवस्था की. हर प्रकार से हमारे प्रयास अनेक बार विफल होंगे, और जब विफल होंगे तब इस बात को समझना है कि भगवान हमसे क्या अपेक्षा करते हैं. जैसे एक गधा है, गधे को आगे बढ़ाना है. दो मार्ग है, एक है कि गधे के गले में कुछ रस्सी बांधो और गधे को खींचो, लेकिन खींचने पर भी गधा आगे नहीं जाता तो गधे को पीछे से लात मारना पड़ता है, पीछे से जोर से प्रताड़ित करना पड़ता है. या किसी व्यक्ति को ऊपर भेजना है तो या तो उसको ऊपर से खींचो या नीचे से धक्का दो. इसी प्रकार भगवान की आध्यात्मिक शक्ति गीता भागवत अर्च विग्रह हरिनाम इत्यादि के माध्यम से भगवान हमको ऊपर खींचना चाहते हैं, और भगवान की माया शक्ति नीचे से लात मार रही है. अर्थात दोनों का एक ही लक्ष्य है, हमको ऊपर पहुंचाना. कोई ऊपर से खींच रहा है, कोई नीचे से पटक रहा है. अंततः बच्चा दोनों का मंतव्य एक ही है कि हम भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएं. इसलिए यहां पर अब बलि महाराज पूरी तरह से परास्त हो गए हैं. पक्षीराज गरुड़ सोलोपान के दिवस के दिन गरुड़ पांच लेकर आते हैं और बलि महाराज को पूरी तरह से अरेस्ट कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं. बलि महाराज जो विश्व के चक्रवर्ती नरेश थे, तीनों लोकों के स्वामी थे, अब बुरी तरह लज्जित अवस्था में बंदी बन गए हैं. बलि महाराज के बंदी बनाए जाने पर ऊर्ध और अधो लोकों में हाहाकार मच गया. महान विलाप का आर्तनाद होने लगा कि हाय, बलि महाराज आज बंदी बना लिए गए हैं. तीनों लोकों के अजय सम्राट अब पूरी तरह परास्त हो गए हैं, उनका शीश झुक गया है. तो उस समय रामन देव बलि महाराज के समक्ष आते हैं, कठोर शब्दों में मेघ गर्जना करते हुए कहते हैं, महाराज बलि, तुमने मुझे वचन दिया था कि तीन पग भूमि तुम मुझे प्रदान करोगे. राजन, दो पग भूमि में, एक में मैंने संपूर्ण पृथ्वी और अधोलोकों को, आकाश को और दिशाओं को पूरी तरह से हस्तगत कर लिया, और दूसरे पग में उच्च लोगों को प्राप्त कर लिया हूं. तीनों लोकों में जहां तक सूर्य का प्रभाव है, सूर्य का प्रकाश जहां उठता है, तारे तथा चंद्रमा इत्यादि जहां प्रतीत होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, और दूर दूर तक जहां तक बादलों से वर्षा होती है, वह सभी की भूमि आप ही के अंदर है, आप ही के पास थी, आप ही की संपत्ति थी। लेकिन उस संपूर्ण भूमि को रखते हुए भी अब आप मुझे तीसरा पद रखने के लिए कोई स्थान नहीं दे पा रहे। ये आप जैसे राजा को शोभा नहीं देता। हे महाराज बलि, इस बात को जान लो कि जो व्यक्ति अपने वचन से विचलित होता है, जो याचक को याचना देने की बात करता है लेकिन फिर उसे याचना को पूर्ण करने में विफल होता है, उसे नरक लोकों में निवास करना पड़ता है। क्या तुम नरक में प्रवेश करना चाहते हो बलि? और हां, तुम्हें अपने वैभव पर वृथा गर्व था कि मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, दान में दूंगा। तो प्रश्न मेरा यही है कि तुमने मुझे वचन दिया लेकिन अब दो पग में मेरे आपकी सारी संपत्ति हस्तगत कर ली, तीसरा पग रखने के लिए स्थान नहीं, अब तुम्हें दंडित होना पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको नरक लोकों में प्रवेश करना पड़ेगा। इस प्रकार वामन देव ने कठोर शब्दों में बलि महाराज को निंदित किया। बलि महाराज तुरंत कहने लगे, हे वामन देव, कृपा करके क्षमा करें, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं कभी इस बात को सहन नहीं कर सकता कि मैं किसी को कोई वचन दूं और फिर उस कथनानुसार कार्य न कर पाऊं। मैंने आपको तीन पग भूमि देने का वचन दिया था, दो पग भूमि में आपने संपूर्ण जगत को समा लिया, लेकिन अब भी एक ऐसा स्थान शेष है जिसके विषय में आपने वर्णन नहीं किया है। मैं आपको, श्रीमान वामन देव को, अपना ये स्तर तीसरा पग रखने के लिए देता हूं। हे वामन देव, कृपा करके मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। मैंने आपको कहा कि तीन पग भूमि दूंगा, मेरा शीश या मेरा स्तर आपकी सेवा में समर्पित है। यदि आप जैसे महान संतों को, आप जैसे ब्राह्मणों को, भगवान स्वयं को मैं वचन देकर उस वचन को पूरा न कर पाऊं तो मेरे जीवन का क्या लाभ है। और अब बलि महाराज वामन देव के द्वारा दंडित होने पर जो विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। विचार कीजिए, यदि जीवन में हमारे पास इतनी संपत्ति हो और हमारा हजार दो हजार का नुकसान हो जाता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। यदि हमारे तीन चार मकान हो, एक मकान में कोई किराएदार घर न खाली करे तो कितना परेशान हो जाते हैं। और यहां पर बलि महाराज की जो सारी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति लूट ली गई है, वो भी एक क्षण में। कई बार जीवन में झटके लगते हैं लेकिन जितनी फुर्ती से वो झटके लगते हैं उतनी वेदना होती है। यदि पता है कि पांच साल में धंधा डाउन होने वाला है तो इतनी वेदना नहीं होती, लेकिन रातों रात सब कुछ उड़ गया तो विचार कीजिए कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा सदमा पहुंचता है। और जिस व्यक्ति के पास जगत की सारी शक्ति थी, रातों रात उसकी सारी शक्ति छीन ली गई, और वह भी साक्षात भगवान के द्वारा, तो हम सोच सकते हैं कि ऐसी अवस्था में जब संपत्ति का नाश हो, प्रतिष्ठा का नाश हो, वेदना हो, समस्या हो, तो हमारी क्या क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अरे बलि महाराज के इस जीवन से ये प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि वास्तव में हमारी शक्ति तुच्छ है, हमारे क्लेश भी तुच्छ हैं, हमारी समस्याएं, हमारे प्रॉब्लम्स भी तुच्छ हैं। और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया बलि महाराज कर रहे हैं उसके आधार पर हमको ये प्रतिक्रिया करनी चाहिए। बलि महाराज कह रहे हैं यहां पर, तुम संस्वागत मम मन्ये दंडम अर्हतमार्पितम,
यन्न माता पिता भ्राता सुहृदश्चा दिशन्ति।
हे वामनदेव, मैं इस बात को जानता हूँ माता पिता भ्राता मित्र इत्यादि भी दूसरों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कोई माता पिता भी अपने पुत्रों को ऐसा दंड नहीं देते जैसा दंड आप मुझे दे रहे हो। इतिहास में किसी ने किसी को ऐसा दंड नहीं दिया जैसा दंड आप मुझे दे रहे हो, इस बात को मैं जान रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस बात का कंप्लेन नहीं कर रहा, शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यही सोचता हूँ, यही विचार करता हूँ, तुम संश्यातम मनिये दंडम अर्हतमार्पितम। आपने जो ये दंड मुझे दिया है वो वास्तव में पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि आप महान हो, आप पूजनीय हो, क्योंकि भगवान आप पूजनीय हो, आप जो दंड दे रहे हो, जो कुछ भी हमारे जीवन में कर रहे हो वह भी पूजनीय है। यमुना माता पिता भ्राता सुहृदश्चा दिशन्ति है, अर्थात भगवान अपने भक्त के जीवन में कई बार इस प्रकार की समस्या देते हैं, इसके अनेक कारण होते हैं। सर्वप्रथम भगवान चाहते हैं कि भक्त अपने जीवन में कुछ सुधार लाए, जैसे बच्चा कुछ अपने छोटे छोटे कुछ खिलौनों के साथ खेलता रहता है और माता पिता के बारंबार आग्रह करने पर भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, तो माता पिता क्या करें? माता पिता आते हैं, बच्चे के खिलौनों को छीनते हैं और छीन कर रख देते हैं और कहते चल पढ़ाई कर। उसी प्रकार भगवान देखते हैं कि इस भौतिक जगत के भौतिक विषय वस्तुओं के साथ हम अपरिपक्व बालकों की तरह खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं और उच्चतम आध्यात्मिक शिक्षा में ध्यान नहीं दे रहे, तो भगवान हमें शिक्षा देने के लिए, हमको शिक्षा की ओर गंभीर बनाने के लिए इन खिलौनों को छीन लेते हैं। कहते हैं कि इन खिलौनों से तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, इस संपत्ति से, इस पद से, इस परिस्थिति से तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, चलो मैं इसको छीन कर रख देता हूँ जिससे गीता भागवत पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकूं। और दूसरा कारण है कि भगवान अपने भक्त की स्तुति करना चाहते हैं। भगवान विचार करते हैं कि जब भक्त को ऐसी स्थिति में डालें तो भक्त किस प्रकार से जगत के सामने उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है कि परेशानियों को कैसे झेला जाए। इस प्रकार यहाँ पर बलि महाराज के उदाहरण से हम देखते हैं कि परेशानियों को किस प्रकार से झेलें, उनको सहन कैसे करें। कई बार पिता अपने पुत्र को अपने हाथ में लेता है, छोटा सा बालक, और छोटे से बच्चे को उछालता है हवा में, और जब बच्चे को हवा में उछालता है तो बच्चा जोर से घबरा जाता है और बच्चे को लगता है क्या हो रहा है, कहता है कि पिताजी क्या कर रहे हैं, अभी तक तो ठीक ठाक थे, अब अचानक इस तरफ में फेंक दिए मुझे हवा में, और घबरा जाता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब वो नीचे गिरता है तो पिताजी उसको हाथ में फिर पकड़ लेते हैं और तब बच्चा जोर से हंसता है और पिताजी भी हंसते हैं। उसी प्रकार भगवान कई बार जीव के जीवन में ऐसी स्थिति ला देते हैं, देखते हैं कि जीव उनकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे, संतुष्ट होकर बैठे तो भगवान उछाल देते हैं, ये बेटा देख क्या होता है। और जब हमारे पद के नीचे जो भौतिक संतुष्टि की आधारशिला नष्ट हो जाती है, हमको लगता है कि हम हवा में लटक रहे हैं, ये समस्या अचानक कहां से आ गई, लेकिन कुछ समय के पश्चात भगवान फिर हमें अपने प्रेममय भुजाओं में स्वीकार कर लेंगे। इस तरह से भगवान हम सभी के सुरक्षा के साधन तैयार करते हैं। तीसरा, भगवान अपने भक्तों की तीव्रता को बढ़ाना चाहते हैं। किस प्रकार उन तीव्रता से भगवान को पुकारे, जैसे वर्णन आता है कि एक बार एक व्यक्ति पर्वत के शिखर पर चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते अचानक पैर फिसल गया, नीचे गिरने लगे, अचानक कहीं पर उनका जो रस्सी था जो कमर से बंधी हुई थी कहीं अटक गई और वह नीचे गिरते गिरते बचे, और यह लेकिन प्रकार उस पर्वत के किसी भाग से लटकने लगे, नीचे खाई थी, चारों तरफ घनघोर अंधकार था, भगवान को पुकारने लगे, बचाइए भगवान, बचाइए, रक्षा कीजिए। तभी एक ध्वनि सुनाई पड़ी, جیب سے چاقو نکالو اور اس رسی کو کاٹ دو. اور گھنگھور اندھکار تھا, نہ اوپر کچھ دکھائی پڑ رہا ہے نہ کچھ نیچے, اور کیول اس رسی کے بلبوتے پہ وہ لٹک رہے ہیں, اور نردیش ملا ہے کہ چاقو سے رسی کاٹ دو. وچار کرنے لگے یہ کیسے کر سکتا ہوں, رسی کاٹوں گا تو پھر کیا بچے گا, میں تو گر ہی جاؤں گا. تو رات بھر چنتا کرتے رہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, جب تک ارمودے کی ویلا ہوئی تب تک دکھائی پڑا آس پاس لوگ وہاں جا رہے تھے. دھرتی سے ایک فٹ کی دوری پر ایک آدمی اوپر سے ایک رسی پر لٹک رہا تھا, اور رات بھر چنتا کر کے اس نے دیہ تیاگ دیا تھا. کیول ایک فٹ کا فاصلہ تھا نیچے, اگر رسی کاٹ دیتا تو آرام سے گر جاتا, سنتشٹ ہو جاتا. لیکن ہمیں تو نہیں سنا, وچار کرتا رہا رسی کیسے کاٹو رسی کیسے کاٹو, رسی کاٹوں گا تو کیا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو وچار کرتا رہا, اس لیے چنتا میں ہی دیہ تیاگ کر دیا. اس لیے بھگوان ہم کبھی بھی اپیکشا کرتے ہیں کہ ہم ان کا آشرے لیں اور اس بات میں شردھا رکھیں, اور یہ سمجھنا بہت آوشیک ہے. اسی لیے پرتیک ویکتی کے جیون میں سمسیائیں آتی ہیں اس کے شدھیکرن کے لیے. جیسے اسپتال میں الگ الگ روگی الگ الگ بیڈ پر ایڈمٹ ہوتے ہیں, اگر کوئی ایڈمٹ ہوا ہے اور اس کو دو چار انجیکشن لگ رہا ہے, وہ چلا نہیں سکتا ارے ڈاکٹر کیا کر رہے ہو, بغل کے بیڈ میں آدمی بیٹھ کر نیوز پیپر پڑھ رہا آرام سے, اس کو ایک بھی انجیکشن نہیں لگا. صبح سے یہ ڈاکٹر تین بار آ گیا, مجھے تین انجیکشن مار کے گیا, کیا چل رہا ہے بھائی, میرے ساتھ کوئی شتروتا ہے کیا؟ تو ڈاکٹر آ کے کہے گا نہیں بھائی وہ 20 دن سے ایڈمٹ ہے, تم تو تین گنا انجیکشن کھا چکا ہو, تم ابھی بھی آئے ہو, ابھی اس کے ڈسچارج کا سمے ہو گیا ہے. اسی لیے جب اسپتال میں ویکتی آتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے بستر پر جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اسے سویکار کریں, شردھا رکھے کہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس اسپتال میں مجھے کیا ملنا چاہیے. یعنی اسپتال میں آ کر وہ ویکتی چین کرنے لگے ڈاکٹر مجھے وہ دوائی دیجیے وہ اچھی ہے میٹھی ہے اور یہ انجیکشن مجھے مت دیجیے اس پیشنٹ کو ہی دے دیجیے, تو واسطہ میں ڈاکٹر اس بات کو بڑی بھانتی جانتا ہے. اس لیے یہاں پر بلی مہاراج کہہ رہے ہیں آپ بھلی بھانتی جانتے ہو بھگوان کس کو کس پرکار کا دن دینا چاہیے. تم سام شلاگیا تمام منیے دنڈم ارحتم ارپتم. تو اس لیے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ واسطہ میں وامن دیو ہی اسروں کے ہتیشی ہیں, وامن دیو ہی اپرتیکش روپ میں سبھی اسروں کے مہانتم ہت چنتک ہیں, شبھ چنتک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تم نونم اسرانام نو پروکش پرم گرو. پروکش روپ سے آپ ہمارے سروشریشٹھ گرو ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہے وامن دیو آپ اس بات کو جانتے ہو یو نا انیک مدانام ودھنشن چکشو آدیشت. کیونکہ ہم بھوتک اندر ترپتی میں پوری طرح پاگل ہو گئے اندھے ہو گئے, آپ ایسی وپتیاں دیکھ کر ہمارے نیتر کھولتے ہو. تو جب بھوتک اندر ترپتی میں کوئی لین ہوتا ہے اور جب سمسیا آتی ہے تو واسطو میں اس کے نیتر کھل جاتے ہیں. بہت بہت ادھک بھوجن کر لے تو پیٹ بھر جاتا ہے, پاچن میں سمسیا ہوتی ہے تو اس سمے کچھ پاچک دینا پڑتا ہے. پاچک کبھی کبھی تھوڑا کڑوا ہوتا ہے لیکن پاچن میں مدد کرتا ہے. اسی پرکار جب بہت ماترا میں ہم بھوتک اندر ترپتی کر لیں پچن نہیں ہوتا تو بھگوان کلیش کیا پاچک دے دیتے ہیں اور اسے کچھ بھکتی کی اور پریرنا پراپت ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر وامن دیو کملی مہاراج کہہ رہے ہیں کہ بھگوان میں آپ کے اس دنڈ کو سویکار کرتا ہوں, پریم پوروک سویکار کرتا ہوں, کرتجتا کے ساتھ سویکار کرتا ہوں. تینا ہم نگرتوسمی بھوتا بھوری کرمنا. میں جانتا ہوں کہ آپ بھوری کرمنا ہیں, ایک ہی کاریہ سے انیک ادیش کو پورا کرتے ہیں اور اسی لیے میں آپ کے اس دنڈ کو سویکار کرتا ہوں, کیونکہ بھگوان جو کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں. کرشنا از آل گڈ. بھلے ہم اپنے درشٹی سے اس بات کو دیکھ نہ پائیں, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھگوان جو کرتے ہیں وہ ہمارے بھلائی کے لیے ہے, ہمارے شبھ کے لیے ہے. ایک گاؤں میں ایک اس پرکار ایک किसान रहते थे, एक बार उनका घोड़ा था, अचानक वन से भागते हुए एक घोड़ा उनके घर पर आ गया तो गांव के सारे लोग उसको कहने लगे, अरे तुम्हारे घर में नया घोड़ा आ गया, ये कहां से आ गया, बधाई हो आपको। तो बहुत प्रसन्न हुए कि घोड़ा आ गया, लेकिन ये किसान कहने लगे सब भगवान की लीला है, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, आ गया ठीक है। कुछ दिनों के पश्चात इनका घोड़ा घर से बाहर भाग गया, घर से बाहर भाग गया तो फिर सारे पड़ोसियों के कहने लगे, अरे एक घोड़ा था घर से भाग गया, इतना कुछ प्राप्त हुआ था चला गया, बहुत बुरा हुआ। तो किसान ने कहा क्या करें, जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं। कुछ दिनों के बाद वह घोड़ा लौट कर आया, लेकिन साथ में 100 घोड़ों को लेके आया, शायद प्रीचिंग करने गया था, वो प्रीचिंग करके लेके आ गया 100 घोड़ों को, और 100 घोड़े आ गए। तो सारे गांव वाले देखे, अरे ये क्या, पहले एक घोड़ा था भागा 100 घोड़े हैं, कमाल है। उसने कहा क्या करें, सब भगवान की इच्छा है, जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। किसान का एक बेटा था, घोड़ों पर सवार होकर एक दिन कहीं जा रहा था, अचानक घोड़े से गिर गया, पैर टूट गए। सारे पड़ोसियां कहने लगे बहुत बुरा हुआ, अच्छा हुआ हमारे पास घोड़ा नहीं है, आपके पास घोड़ा था, देखो बेटे का पैर टूट गया, बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा क्या करें, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है। कुछ दिनों के बाद वहां के राजा ने एक विपक्षी राजा पर युद्ध घोषित किया और कहा कि गांव में जितने भी जवान लड़के हैं सबको युद्ध में चलना है। तो गांव में सैनिक आए, हर घर से जो जो लड़के थे सब पकड़ के लेके गए। किसान के घर पे आया, देखा पैर टूटा हुआ है, बोला ठीक है इसको छोड़ दो, लंगड़ा है ये, अंगू है, इसको क्या लेके जाएंगे। तो बाकी सारे लड़कों को लेके चले गए, राजा दुर्बल था, परास्त हो गया, सारे सैनिक मारे गए, गांव के जितने लड़के थे सब मारे गए। सब गांव वाले आके कहने लगे कितना सौभाग्य है तुम्हारा, लंगड़ा है लेकिन लड़का तो है कम से कम, हमारे तो 2 पैर के थे लेकिन सब चले गए, अब कोई नहीं बचे। इनका क्या करें, भगवान ने जो किया अच्छा किया। अर्थात हर परिस्थिति में भगवान का हस्तक्षेप कैसे हमारे जीवन में हो रहा है इसको समझ पाना बहुत कठिन है। एक चींटी कैसे समझ सकती है कि हम लोग यहाँ बैठकर अभी क्या चर्चा कर रहे हैं। अगर स्टेज पर एक चींटी घूम रही है उसको क्या समझेगा क्या कि यहाँ पर 500-600 लोग बैठकर कुछ सुन रहे हैं। उसको पता भी है क्या वो कलकत्ता में है, वो स्टेज पर है। 2 चींटी आपस में मिलती हैं तो बस यही चर्चा करती हैं कि बस ये चीनी कहाँ मिलेगा, ये चीनी कहाँ मिलेगा, हो गया ये चीनी यहाँ रखिए, ये चीनी यहाँ रखिए, बस चींटी का जीवन समाप्त। वो चीनी को हम क्या बताएं कि आज बहुत बड़ा रैली हुआ था यहाँ पर, उनको क्या बताएं कि देश विदेश में क्या चल रहा है, उनको क्या बताएं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। अर्थात उच्च स्तरीय ज्ञान चींटी क्या समझ सकता है। इसी प्रकार यदि हमारी क्षुद्र बुद्धि है तो उस बुद्धि से हम भगवान और आध्यात्मिक तत्व को नहीं समझ सकते। इसलिए बड़े महाराज कह रहे हैं आप जो मेरे साथ कर रहे हो उचित है और मैं जानता हूं कि ये मेरी भलाई के लिए है। गिरयो वर्ष धारा भी हन्यमाना न विद्यते अभिभूयमाना व्यसने यथा अधोक्षय चेतसः। गिरयो वर्ष धारा भी, जब एक महान पर्वत पर मूसलाधार वर्षा होती है तो उस महान भयंकर वर्षा के परिणाम स्वरूप उस पर्वत पर जितना धूल धूसर होता है वह सब स्वच्छ हो जाता है और निर्मल होने पर वही पर्वत चमकने लगता है। वर्षा के प्रभाव से वह पर्वत हिलता नहीं, वह अधिक स्थिर रहता है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में विपत्तियों की वर्षा होती है, समस्याओं की वर्षा होती है, क्लेशों का आघात होता है तो शक्तिशाली भक्त का हृदय पर्वत की तरह स्थिर और अधिक और अविचल रहता है और केवल हृदय के ऊपर जो अनर्थों का आवरण है वह अनर्थ भी नष्ट हो जाते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है, मन प्रफुल्लित होने लगता है और कृष्ण भक्ति से हमारा हृदय चमकने लगता है। इसलिए कभी भी जब जीवन में समस्याएं आए तो हमें अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और ये भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए योग्यता है। और ये हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर है, क्लेश को सहन कैसे करें, हम को तनवेद सफरें। अर्थात समझें कि जब डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो ये नहीं कि कोई पूर्व जन्म का वैर है डॉक्टर का, ये नहीं कि परिवार से उनका कोई वैर है और वो अपना क्रोध निकाल रहा है हम पर, नहीं, हमारी बीमारी है और उस बीमारी को दूर करने के लिए ये औषधि उपयुक्त है और उस औषधि को हम तक पहुंचाने के लिए ये प्रक्रिया ही उपयुक्त है। और इस भावना को रखते हुए हम उस क्लेश को सहन कर सकते हैं। और सब बलि महाराज कहते हैं, हमारे परिवार में इसके उत्कृष्ट उदाहरण तो हमारे पितामह ही हैं, प्रहलाद। हमारे पितामह प्रहलाद के साथ साथ क्या क्या नहीं बीती, उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने अनेक अनेक यातनाएं दी और उन्होंने उन सभी यातनाओं को सहन किया। अर्थात प्रहलाद महाराज भी मेरे लिए प्रेरणा के एक महान स्रोत हैं। जिस प्रकार उन्होंने महान विपत्तियों को सहन किया, इसी प्रकार हे भगवान, आप जो विपत्तियां मुझे दे रहे हो उन विपत्तियों को मैं सहन करूंगा और किसी बात की मुझे शिकायत नहीं, मैं केवल आपको धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार बलि महाराज ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। उस समय प्रहलाद महाराज जो निकट खड़े थे वो कहने लगे, भगवान हे वामनदेव, आपकी भी क्या लीला है, आपके दरबार में जो होता है उचित ही होता है, समुचित ढंग से आप भक्त के साथ आदान प्रदान करते हो, आपकी शक्ति से ही भक्त कुछ पाता है, आपकी शक्ति से ही भक्त कुछ खोता है, जब आपकी इच्छा हुई तब आप कुछ देते हो, जब आप चाहते हो तो खींच लेते हो, ये सब आप ही की लीला है। और उस समय बलि महाराज की पत्नी गंजावली वहां पर थी और गंजावली खड़ी खड़ी कहने लगी, हे भगवान, हे वामनदेव, इस जगत में जो कुछ चल रहा है केवल आपकी शक्ति से चल रहा है, संपूर्ण जगत का निर्माण किया आपने केवल अपने आनंद के लिए, लेकिन फिर भी इस जगत में ऐसे अनेक मिथ्या अहंकारी जीव हैं जो अपनी क्षुद्र बुद्धि से ये विचार करते हैं कि वो इस जगत के स्वामी हैं, ये संपत्ति उनकी है और वो दूसरों को कुछ दान भी दे सकते हैं, ये इनकी कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है। हे भगवान, कृपा करके ऐसे दुर्बुद्धियों को आप शुद्ध कीजिए। तो वह बलि महाराज लगभग अकेले ही पड़ गए। उनकी पत्नी वृंदावली तक वामनदेव की स्तुति करते हुए कह रही है कि कई लोग जो दान देते हुए भी सोचते हैं कि मैं दानी हूं। तो जब आपातकालीन परिस्थिति आती है तो कई बार हम स्वयं को अकेला अनुभव करते हैं। तो ऐसी अवस्था में बलि महाराज के पक्ष लेते हुए ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी बलि महाराज के वकील बन जाते हैं और वामनदेव के समक्ष आकर कहने लगते हैं, यत पादयो रशतधीर सलिलं प्रदाय दुर्वांकुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम। हे भगवान, अरे आपने शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया कि कोई पत्र पुष्प फल जल इत्यादि केवल भक्ति भाव के साथ आपके चरण कमलों में अर्पित करे तो आप उसको वैकुंठ में स्थान प्रदान करते हो। पत्रम पुष्पम फलम सोयम, आपने बताया है शास्त्रों में, आपने इतिहास में इस बात को प्रमाणित किया है, यत पादयो रशतधीर सलिलं प्रदाय, बिना शत के, बिना तापट के, बिना कपटता के, यदि थोड़ा सा जल, दो बूंद जल भी कृष्णा के चरण कमलों में अर्पित करे, भगवान ऐसे भक्त को वैकुंठ में प्रवेश देते हैं। दुर्वांकुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम। तो यहां पर आपके समक्ष ये व्यक्ति फल नहीं कुछ फूल नहीं, अरे बलि महाराज ने तीनों लोकों को समर्पित किया है, अपने तीनों लोकों की संपूर्ण शक्ति और सत्ता और संपत्ति और इसके साथ साथ अपना सर, अपना स्वयं का देह भी आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया है। अरे वामन देव जी, अब आपकी इनसे क्या अपेक्षा है, आप चाहते क्या है इनसे? जब आपने पूर्व काल में केवल कुछ पत्र पुष्प फल अर्पित करने वालों को वैकुंठ में प्रवेश दिया है, तो जब तीनों लोगों के स्वामी बलि महाराज ने सब कुछ समर्पित किया, तो फिर उनकी ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हो? अरे पास कर दो भाई, इतने भी भयंकर परीक्षक मत बनो। तो भगवान हम सभी को अपने जीवन में परीक्षाएं देते हैं, और जब परीक्षाएं आती हैं तो वह हमारे स्तर के अनुसार होती हैं। अमेरिका में कुछ लोगों ने मिलकर निश्चय किया कि बच्चों को ये जो स्कूल में परीक्षा होती है ये बहुत परेशानी की बात है, इसलिए हम ऐसा स्कूल खोलेंगे जिसमें परीक्षा न होगी। तो उन्होंने विचार किया और सब मिलकर एक बढ़िया स्कूल चालू किए। केवल स्कूल में खिलौने थे, किताबें थी, खिलौने थे, और बस कह दिया कि जिसको जितना पढ़ना पड़ो, परीक्षा वरीक्षा कुछ नहीं होगी। पांच साल के बाद पाया कि बच्चों ने लगभग कुछ नहीं सीखा, बस खेल ही रहे हैं 5 साल से। क्यों? क्योंकि कुछ प्रेजर नहीं है, कुछ परीक्षा नहीं है। ऐसे भारत में एक लड़का बेचारा अपना एग्जाम दे रहा था, निबंध लिखना था, कॉम्पोजिशन, और कॉम्पोजिशन का शीर्षक था मुझे वो जो सबसे बुरा लगता है, व्हाट आई हेट द मोस्ट। उसने अपना परीक्षा पत्र लिया और स्टेपल करके दे दिया, यही मुझे सबसे बुरा लगता है। परीक्षा किसी को पसंद नहीं, लेकिन परीक्षा नहीं देंगे पास कैसे होंगे, शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? तो भगवान हम सभी को परीक्षा देते हैं, और कई बार हमारे मन में शंका होती है कि लगता है हमसे कुछ ऊंचे स्टैंडर्ड का परीक्षा दे दिया, मुझसे सहन नहीं होता ऐसा परीक्षा दे दिया। नहीं, भगवान बिल्कुल परफेक्ट एग्जामिनर है, जिसका जो स्टैंडर्ड का पेपर होगा वही देंगे। और हम देखते हैं कि शैक्षणिक प्रणाली में भी किसी को टेंशन आ सकता है कि परीक्षा में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन 8वीं के बच्चे को इस बात का टेंशन नहीं रहता कल कहीं 10वीं का पेपर मिल गया तो क्या होगा, इस बात का तो टेंशन नहीं रहता ना। हमारे पेपर में प्रश्न क्या आएंगे नहीं आएंगे, मैं समझ पाऊंगा नहीं पाऊंगा, इस बात की चिंता रहती है, लेकिन ये चिंता नहीं रहती कि कहीं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर मिल गया तो क्या होगा। उसी प्रकार भगवान जो हमको जीवन में परीक्षा देते हैं, वो हमारे स्तर, हमारी श्रद्धा, हमारे विकास के अनुसार ही देते हैं, और जो हमारे उत्तीर्ण होने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो उसके अनुसार ही हमको प्रदान करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस प्रकार जो बलि महाराज का ये प्रसंग है, इससे प्रेरणा प्राप्त करें। और वामन देव अंतिम अपने कुछ शब्द इस प्रकार कहते हैं कि वास्तव में मैंने बलि महाराज के साथ ब्रह्मा जी ऐसा बर्ताव इसलिए किया क्योंकि मैं कुछ शिक्षाएं देना चाहता था। और इस प्रसंग से हम 5 शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम वामन देव कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास संपत्ति प्रचुर मात्रा में हो जाए, उसे लगता है कि मैं भगवान को तिरस्कार करके अपना जीवन जी सकता हूं, उसके अंदर नास्तिकता का विकास होने लगता है। और ऐसे नास्तिकता को दूर करने के लिए भगवान उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि उसको लगने लगता है कि मैं ही करता हूं। जैसे गांव में मुर्गा था, मुर्गा सुबह सुबह कुकुरुकू करता था, और देखा कि कुकुरुकू करने पर भी गांव के लोग उठने गए, तो उसने विचार किया अब मैं इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चला जाऊंगा तो इस गांव में सूर्योदय नहीं होगा, क्योंकि रोज सुबह मैं कुकुरुकू करता हूं तो सूर्योदय होता है, तो जब मैं कुकुरुकू नहीं करूंगा तो सूर्योदय नहीं होगा। तो विचार करके मैं दूसरे गांव में चला गया, और दूसरे गांव में जाकर सुबह सुबह कुकुरुकू किया, वहां भी सूर्योदय हुआ, बोला हाँ देखा सूर्योदय आ गए, मेरे साथ साथ वो भी आ गए। अर्थात यदि कोई इस प्रकार विचार करे कि हमारी शक्ति से, हमारी सत्ता से सब कुछ चल रहा है, और भगवान के विषय में जानकारी न रखे तो भगवान उसकी संपत्ति को छीन लेते हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए मैंने ऐसा व्यवहार किया। दूसरे वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए मैंने ये कार्य किया। अर्थात मनुष्य जीवन केवल धनार्जन के लिए नहीं, संपत्ति अर्जित करने के लिए नहीं, मनुष्य जीवन है भगवान की सेवा के लिए। और इसीलिए हमें चाहिए कि मनुष्य जीवन का ऐसा सदुपयोग करें। तीसरा वो कहते हैं, मैं ये दिखाना चाहता था कि जिस व्यक्ति ने धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त करके भी अपने जीवन में गर्व नहीं उत्पन्न किया, वह वास्तव में मेरा कृपा का उचित पात्र है। ऐश्वर्य प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं, लेकिन ऐश्वर्य प्राप्त करने के पश्चात गर्व नहीं होना चाहिए। तो इस बात को मैं प्रमाणित करना चाहता था। और चौथे, मैं बलि महाराज की सत्यता और उनकी सहिष्णुता की स्तुति करना चाहता था कि इतनी कुछ यातनाएं उनके जीवन में हुई, लेकिन कितने सहनशील हैं ये। और पांचवें, मैं एक बात को प्रमाणित करना चाहता था कि भगवान के चरण कमलों में कुछ भी समर्पित करो, कभी हानि नहीं होगी। वामन देव बलि महाराज को बुलाए और कहने लगे, बलि महाराज अब हम आपको सुकल लोक का अधिनायक बनाते हैं, सुकल लोक विश्वकर्मा के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, संपूर्ण ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और मैं स्वयं आपको उस लोक में जाकर आपका मैं द्वारपाल बनूंगा, आपकी रक्षा करूंगा, आपका दास बनूंगा। बलि महाराज ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, लेकिन भगवान को सर्वस्व समर्पित करने के पश्चात बलि महाराज कुछ खोए नहीं, बलि महाराज भगवान की सेवा को प्राप्त कर लिए और भगवान स्वयं उनके दास बन गए। रावण लंका को प्राप्त करने के लिए, अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए भीषण तपस्याएं की और शिवजी के समक्ष अपने एक एक सर को काटकर अग्नि में डाल रहा था। रावण अपने एक एक सर को, दस सर को काटकर रावण अपने लंका को खो दिया, उसी लंका को भीषण ने केवल सर झुकाकर पा लिया। अर्थात भगवान के समक्ष केवल हम सर झुकाएंगे तो बहुत कुछ प्राप्त करेंगे जो सर काटकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से हम पे हरिनाम संकीर्तन प्राप्त है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि मानव जीवन में इस हरिनाम संकीर्तन को जीवन में प्राथमिकता दें। आज कथा का आखिरी दिन है और कुछ ही क्षणों में हम समाप्त करने वाले हैं, तो इस संदेश को आप ध्यानपूर्वक सुने। आप सभी के पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है। इस सीमित समय और ऊर्जा में आपको अधिक से अधिक फल प्राप्त करना है। ये हरे कृष्ण महामंत्र बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस मंत्र को प्रतिपादित किया। ये श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष है। कोई भी आप माला लीजिए और माला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, कोई एक माला दीजिए और हम आपको ये माला करने की विधि बताते हैं। ये 108 मणि है और आपको यहां बाहर जाते जाते ये माला भी मिलेगी। इस माला पर आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना है। इस प्रकार पहली और तीसरी उंगली रखिए और इस तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर दूसरे मणि पर आइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह महामंत्र करते करते आप अंतिम मणि पर आओगे और उसके पश्चात फिर यहां से आप वापस लौट जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात ये महामंत्र का जप बहुत आसान है। ये इसको कहते हैं एक माला। ऐसे आप रोज दो माला कीजिए, चार माला कीजिए, कुछ समय के बाद 16 माला कीजिए। इस भक्ति में आगे बढ़ने का जो मार्ग है उसको प्राप्त करना हो तो यहाँ श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन के भक्तों से संपर्क कीजिए, श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, सत्संग कीजिए, घर पर शाकाहारी भोजन बनाइए और भगवान के समक्ष उसको अर्पित कीजिए और उस भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए। अर्थात आप अपने परिवार को उत्कृष्ट जीवन शैली प्रदान कर सकते हैं केवल इस महामंत्र के जप से। यह बहुत शक्तिशाली मंत्र है और आप कृपा करके इस मंत्र को गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में उतारिए और जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है ज्ञान, यह दूसरों में बांटिए, दूसरों में वितरित कीजिए और जितना आप इस ज्ञान को देंगे उतना ही आपके अंदर इसमें श्रद्धा और बढ़ेगी। जिस हाथ से सुगंधित फूल बचता है उस हाथ में भी कुछ सुगंध रह जाता है। अर्थात अपने हाथ से आप दूसरों को उद्धार कीजिए, ज्ञान दीजिए। और वास्तव में हम कभी ये निकल प्रकारण हरे कृष्ण आंदोलन में आ गए हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है। तो जो ये निकल प्रकारण आपको प्रयास करना है दूसरों की सहायता करने, जैसे जहाज पर कुछ लोग खड़े थे, अचानक एक व्यक्ति नीचे गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा समुद्र के अंदर से, बचाओ 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 बचाओ, डूब रहा था बेचारा। तभी एक दूसरा व्यक्ति अंदर छलांग लगाया, तैर कर गया, उसको पकड़ कर लेके आ गया और बचा दिया। जब बचाकर ऊपर लाया सब लोग उसकी स्तुति करने लगे, वाह 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 वाह, आपने तो कमाल कर दिया, क्या छलांग लगा के आपने बचाई, आपको पुरस्कार देना चाहिए। तब और कहने लगा, शांति शांति, सब ठीक है, लेकिन पहले बताओ किसने मुझे धक्का मारा, मुझे धक्का किसने मारा। तो भले ही हम चाहकर या न चाहकर हम हरे कृष्ण आंदोलन में आए हो, ये न केवल प्रकारण अब धक्का लग गया है, हमें चाहिए कि उसके अनुसार कार्य करना है। तो आपको चाहिए कि इस मंत्र को प्राथमिकता दें और इस मंत्र के आधार पर दूसरों की सहायता करें, दूसरों की सेवा करें। और हर रविवार को यहां पर श्री राधा गोविंद मंदिर में कार्यक्रम होता है, मंदिर के भक्तों से आप संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार प्रेम के संबंध स्थापित कर सकते हैं। केवल भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर ही प्रेम के असली संबंध स्थापित होते हैं और इसलिए आपको चाहिए कि इस विषय में अधिक जानकारी पाएं। और इसलिए हम आप सभी के बड़े आभारी हैं कि भारी संख्या में आप लोग यहां आए और इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस श्रीमद् भागवत पुराण को सफल बनाने का भरपूर प्रयास किया। केवल कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अतिम अनुकंपावश यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। मेरी निजी कोई योग्यता नहीं रही, केवल भक्तों की कृपा है कि ये जो कुछ भी ज्ञान है हम आप तक पहुंचा पाए और जो कुछ भी आपने सुना है उसको आप दूसरों में बांटने का प्रयास कीजिए। और आरंभ में हो सकता है कि आप जो कुछ बताओ उसमें कुछ त्रुटियां, कुछ खामियां, कुछ कमियां रह जाएं। कई बार लोग कहते हैं कि मैं जप नहीं आरंभ करना चाहता क्योंकि मैं बहुत पापी हूं, मैं इतना पापी हूं कि माला को नहीं छू सकता। तो ये तो यही कहना हुआ कि मैं बहुत महिला हूं इसलिए स्नान नहीं करूंगा, इतना महिला हूं कि म्यूनिसिपैलिटी का पानी गंदा हो जाएगा, बाथरूम गंदा हो जाएगा। आप अशुद्ध हो तो माला चाहिए शुद्ध करने के लिए। और आपको चाहिए कि गलतियों से न डरें, जितना हो सके आप अपने जीवन में इस मंत्र का उच्चारण करें, जप करें। कोई आपसे कोई प्रश्न करता है तो यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करें, नहीं हो सकता फिर भी आप चिंता न करें क्योंकि भगवान केवल आपके प्रयास को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है, यदि प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए गलतियों करने से न डरें, भगवान अवश्य आपकी गलतियों को क्षमा करेंगे। जैसे हमारे यूथ फेस्टिवल में किसी ने प्रश्न किया, लड़के ने कुछ महीने पहले, कि हम प्रचार करते हैं, कई लोग प्रश्न पूछते हैं, कुछ करते हैं या कुछ भक्ति करते हैं, गलतियां हो जाती, डर लगता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। तो हमने बताया कि प्रयास करना है, गलतियां करने से मत डरो। और इस संदर्भ में میں نے بتایا کہ کس طرح کالج میں کیمپس انٹرویو کے سمے ہم پہ کسی نے کتھا بتائی تھی کہ کیسے انٹرویو ایک چل رہا تھا اور اس انٹرویو میں کینڈیڈیٹ کو بتایا گیا کہ انگریزی کی پریکشا ہے, تو انگریزی کی پریکشا کے اس کے سارے جو تھے سب پاس ہو گئے, بس لاسٹ ایک کوشچن رہ گیا تھا اور وہ تھا کہ اپوزٹ بتانا تھا, جو بھی بتاؤ اس کا وپریت بتانا تھا. تو کینڈیڈیٹ کو انٹرویوئر نے کہا کہ چلو اب میں جو ایک ایک شبد کہوں گا اس کا اپوزٹ بتانا. بولا ٹھیک ہے. تو انٹرویو نے کہا ڈے, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تو کینڈیڈیٹ نے کہا نائٹ. تو اس نے کہا گڈ. بولا بیڈ. کہا بلیک. بولا وائٹ. آؤٹ. بولا ان. اگلی. اس نے کہا پچھلی. یہ کیا ہے؟ کہا رانگ. تو کینڈیڈیٹ کو لگا کہ یہ اگلا پرشن ہے, تو اس نے کہا رائٹ. تو اس نے کہا ارے یہ کیا بول رہے ہیں؟ شٹ اپ. اس نے کہا آئی ول سپیک. اس نے کہا گیٹ آؤٹ. تو کم ان. اس نے کہا یو آر ریجیکٹڈ. اس نے کہا آئی ایم سلیکٹڈ. تو کینڈیڈیٹ نے کہا اس طرح سے کر رہا ہے, تو انٹرویو نے کہا چلو بھائی یو آر سلیکٹڈ ہے, تو غلطیاں کر کے بھی چھوڑتا نہیں, لاسٹ تک لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے یار چھوڑو, تم تو لے ہی لیتے ہیں, سویکار کر لیتے ہیں. ارتھات بیچ میں کچھ غلطیاں ہو بھی جائیں تو بھگوان دیکھتے ہیں کہ چلو بھائی تھوڑا یہاں وہاں چلا گیا لیکن واپس لائن پہ آ گیا ہے, یو آر سلیکٹڈ. ریجیکٹ نہیں کریں گے اتنی آسانی سے. اس لیے بھگوان کی بھکتی پہ وشواس ہونا چاہیے. تو یا آپ غلطی کریں یا بھکتی مارگ میں دوسرے کچھ غلطی کریں, کبھی ان کا ترسکار نہیں کرنا چاہیے, کبھی ان کے پرتی اپرادھ نہیں کرنا چاہیے. یا اتہاس میں کبھی کوئی غلطی کیا ہو اس کو دیکھ کر ہم ہتوتساہت نہیں ہونے چاہیے اور ان کی نندا نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بھگوان اپنے دربار میں ادار چیتا ہے اور پرتیک جیو کو وہ سلیکٹ کرنے کے لیے نرنتر پریاس کرتے رہتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی ترٹیوں کو وہ نہیں دیکھتے, تو یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے من کی اچھا کیا ہے. میں کرشن کو سنتوشت کرنا چاہتا ہوں, کرشن سے پریم بنانا چاہتا ہوں, بھگوان آپ کے پریم کی بھاونا کو دیکھتے ہوں. اس لیے ہم آپ یہی نویدن کریں گے کہ کرپا کر کے آپ اس ہرے کرشن مہا منتر کو پراتھمکتا دیں. شری چیتنیہ مہاپربھو کا جنم استھل یہاں سے بہت نکٹ ہے, مایاپور دھام, وہاں آپ لوگ کبھی جاتے ہی ہوں گے. اور یدی آپ بمبئی آئیں تو ہمارے مندر میں آپ اوشیہ آئیں, ششی راجا راج بہاری مندر, ششی رادا گرداری مندر, ششی رادا گوپیناتھ مندر, یہ تین مندر انتراشٹریہ کرشن بھاونا امرت سنگھ کے بمبئی میں ہیں. یدی آپ کا بمبئی میں آنا ہوگا تو آپ اوشیہ ان مندروں میں آ کر رادھا کرشن کے وگرہوں کے درشن کیجیے. یہاں پر کلکتہ میں تو ایک پراپرٹی کے علاوہ رادھا گووند مندر جگنناتھ بلدیو سبھدرا یہ نکٹ پر ہے ہی, وہاں بھکتوں کے سنگ کیجیے, ان گرنتھوں کو پڑھیے, اپنے جیون کو سفل بنائیے. انت میں میں کچھ بھکتوں کے پرتی اپنا آبھار ویکت کرنا چاہوں گا جن کی کرپا سے میں اس کارکرم میں آ پایا اور آپ کے سمکش کچھ دو شبد ورنن کرنے کا پریاس کر پایا. سروپرتھم میں دیارام پربھو کا بہت آبھاری ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر نمنترن دیا اور آنے کی انومتی دی. اور یہاں پر ایک بھکت ہیں شیاما رمن پربھو, جن کے انوگرہ سے نویدن سے میں سب سے پہلے یہاں پر آنے کا وچار کیا. اور میں بھکتی پروشوتم مہاراج کا بھی بہت آبھاری ہوں کہ وہ پرتیدن یہاں اس پرکار کارکرم میں آ کر ہمارا اتساہ بڑھاتے رہے, اپنا آشیرواد دیتے رہے. پھر مندر میں اکھلاتما پربھو, آشر گورانگ پربھو, گنگا نارائن پربھو اور ابھویت پربھو, ان کا میں آبھاری ہوں کہ ان کے سہیوگ سے اور ان کے پربندھ سے یہ کارکرم چل پایا. اور پھر مندر میں پریم بھکتی پربھو جو بھی اچھی پرکار سے ہماری سیوا کر رہے تھے. یہاں گرو سدا ہال میں سدیپت پربھو اور رادھا رمن پربھو کا میں آبھاری ہوں کہ دونوں نے کافی پریاس کر کے اس کارکرم کو یہاں پر سفل بنانے کا پریاس کیا. اور انتم بمبئی سے ہمارے ساتھ پریم ندی پربھو آئے جو یہاں پر کچھ یوتھ پریچنگ کارکرم کل کیے اور مندر میں بھی بڑھیا کلاسز انہوں نے دیے. اور ساتھ میں ہمارے وینو دھاری پربھو اور ڈاکٹر مانک यदि बंबई से आए हैं तो इन सभी भक्तों के सहयोग से, इन सभी भक्तों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ है। अंत में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप अपने दिन व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर भारी संख्या में यहां पर आए और बड़ी शांति से, बड़े ध्यान से इस कथा को सुनते रहे। आशा है कि आपको इस कथा से कुछ लाभ प्राप्त होगा। यदि कुछ त्रुटि या कमी रह गई हो या कोई गलती हो गई हो तो कृपा करके क्षमा करें और आपको यही प्रार्थना करूंगा कि अपनी असीम अनुकंपा हम पर बनाए रखें, जिससे शिला प्रभुपाद के मिशन में हम कुछ तुच्छ योगदान प्रदान कर सकें। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसके साथ साथ कथा को हम विराम देते हैं। भगवान की इच्छा हुई और भक्तों की इच्छा हुई तो फिर भविष्य में कभी ऐसा मौका मिलेगा। तब तक के लिए हरे कृष्ण। कुछ प्रसाद की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna,
हरे हरे
हरे हरे हरे हरे हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे हरे हरे हरे हरे राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
ేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః అనంతకోటి వైష్ణవునికి
జయ.